तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या बताया?
तीन बिंदु।
क्या बताया डीआईजी साहब?
तीन बिंदु।
तीन बिंदु, पहला माताएं बताएंगी, दूसरा तीसरा जो बीत गया उसको बिंदु। और फूल कौन से चढ़वाए? कितने अच्छे फूल हैं बाबा के। बाबा को यही सुन जाएगा, अभी आ जाएंगे वो। तो बाबा ने फूल भी चढ़वाए और बलि भी ले ली। बकरा क्यों पसंद किया? बाबा की भाषा ही कितनी सुंदर है। और बाबा का स्वरूप था प्यार का सागर। फिर से चार बार हम सब देख चुके हैं कि बाबा प्यार का सागर था। बिंदी भी सबको लगा दी ना। पहले बाबा ड्राई फ्रूट फेंका करते थे, अब दूर से ही। और कौन सी पॉइंट थी मेरा? मेरा बाबा कहने से माला माल, और बाकी मेरा कहने से मैला मैले हो जाएंगे बाकी से। और मेरा बाबा कहने से माला माल,
शुरुआत में ही बाहों का माला पहना।
हाँ, बाहों की माला पहना ही बाबा ने। हाँ, तो महीन मैपन निकाल लें तब तक। भाई क्या कहा उसने? अरे पैदल या साइकिल से? अच्छा,
बाबा का ज्ञान मेरे को समझ लिया।
हाँ बोलो, सूक्ष्म मैपन, ठीक है, और बोलते जाओ तब तक। मैपन हम बोल रहे हैं, सूक्ष्म मैपन के पॉइंट्स।
जो बाबा ने विशेषता दी उसको भी अपना मान लिया।
मैं बहुत होशियार हूँ, मेरी बात माननी चाहिए, मेरी टचिंग बहुत सुंदर है, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मैं राइट हूँ। बहुत सूक्ष्म हो जाता है, मैं राइट हूँ। और बोलो, मेरे जैसा माताओं को भी रह सकता है कहीं, मैंने देखा है मेरे जैसा भोजन कोई नहीं बनाता होता है। तो अच्छी बात, विशेषताएं हमारे में होती ही हैं, तब तो मैं आता है। विशेषताएं होना बहुत अच्छी बात है, इसका अर्थ ये नहीं कि विशेषताएं न हो, लेकिन विशेषताओं को बाबा की देन समझ लें, बाबा की गिफ्ट है, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो विशेषताओं में यदि मैंपन आ जाता है तो क्या नुकसान होता है? बोलो क्या क्या, प्रैक्टिकल बताओ। मैले हो गए कपड़े दिखाई देते हैं, हम मैले हो गए माना, अहंकार आ जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है, स्वभाव बदल जाता है, बोल बदल जाते हैं, ये मैलापन है ना। तो सूक्ष्म मैं को ध्यान रखना है। देखो, हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, बाकी ढीले हैं, ये संकल्प मैंपन का हो गया। हमारा मनन करना बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन मेरा ही मनन अच्छा है बाकी का नहीं है, ये मैंपन हो गया। मेरा योग, मेरी एकाग्रता बहुत सुंदर है, दूसरों की नहीं है, तो हम ये ना करें। इसको प्रभु देन समझ के हम बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे, जो भी प्रभु देन है उनको यूज अवश्य करेंगे। ऐसे नहीं हम सोचे नहीं है भाई, हम तो कुछ नहीं है, ये हीन भावना हो जाएगी, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दोनों में हमें समान ईश्वरीय देन है हमारे साथ, तो उसका नशा भी हो, उसकी खुशी भी हो, उसे यूज भी करें जीवन में। और कौन सी पॉइंट थी? स्वमान के लिए बहुत अच्छी बात कही, शब्द बोलो कोई। हाँ, स्वमान के पीछे तो दुनिया में लड़ाई होती है। एक बहुत अच्छी लाइन बाबा ने बोली, बातें कोई भी बातें स्वमान को बुलाए नहीं। कौन सा स्वमान? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बहुत अच्छी बात स्वमान की थी ये, मुझे ये बहुत प्रिय लगी। बातें भुला देती है ना, नहीं तो कोई बात आई, किसने कुछ उल्टा सुल्टा बोला, कुछ जीवन में कुछ आ गया, मान अपमान हो गया, तो उससे स्वमान भूले नहीं। सभी बातों से बड़े हैं हम, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो देखिए बहुत सुंदर बैलेंस होगा, एक हमारा स्वमान ऊंचाई, दूसरा हमारी नम्रता निर्माणता, निचाई नहीं। जो स्वमान में स्थित है उनमें नम्रता आएगी, वो महान बन जाएंगे। और भी कुछ था बाबा की मुरली में? हाँ हाँ, चेहरे से दूसरे हमारा चेहरा देखें तो उन्हें क्या लगे? नहीं कुछ है नहीं, ये बहुत भाग्यवान है। हमारा मस्तक ऐसी टीवी स्क्रीन बन जाए कि लोग उस पे पढ़ सके, ये बहुत भाग्यवान है। ये सब होने वाला है। बाबा ने 69 में ये बातें बहुत सुनाई थी, तब तो लगता था अभी अभी होगा जल्दी। बाबा इतना होशियार टीचर है ना हमारा, कभी ये आभास नहीं देता कि लंबा काल चलना है, होने वाला है, जल्दी करो। तो तुम्हारा मस्तक टीवी स्क्रीन बन जाएगा। तब तो टीवी थी भी नहीं कहीं, केवल बॉम्बे में टीवी थी, दिल्ली में भी कहीं कहीं दिखाई देती थी किसी किसी के घर में। तुम्हारा मस्तक टीवी स्क्रीन बन जाएगा, जिस पर दूसरे लोग अपने भाग्य को देखेंगे। अपने, हमारा तो दिखाई देगा ही, लेकिन हमारा चमकता हुआ भाग्य उन्हें अपने भाग्य का भी आभास कराएगा। तो बाबा की पालना हम सबको मिल रही है। मुरली सुनते सभी लक्ष्य रखा करें, मुरली है बहुत सुंदर, हम सुनते ही हैं, बाबा की पालना है। लेकिन हम ये लक्ष्य बना लें कि वो 3 घंटे हमें स्वयं को श्रेष्ठ वाइब्रेशन से भर लेना है। सुख, बहुत सुख है ना, ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय पालना से पूरा भरपूर करना है। वहां हम इस लक्ष्य को लेकर भी बैठे, तो जैसे बाबा के वाइब्रेशन निरंतर फैलते रहते हैं, हम बाबा पर कंसंट्रेट करेंगे तो उसके वाइब्रेशंस हमें बहुत ज्यादा सुख देते जाएंगे, इसका सभी बहुत ध्यान रखेंगे। तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात 3 बिंदु, 3 बिंदु का अर्थ ही है चित्त को हर तरह से शांत रखते हुए श्रेष्ठ स्वमान में रहना। चित्त शांत, बहुत सारे संकल्प मनुष्य के पास हैं, व्यर्थ का तो सागर है ना। इस पर आप सभी एक होमवर्क भी करें, बहुतों को इधर उधर क्लास करानी होती होगी। किस किस को क्लास करानी पड़ती है, हाथ उठाओ। ठीक है, तो एक कहीं भी आप सेंटर में जाएंगे तो अच्छा होगा ना, वो कहेंगे भाई कुछ क्लास कराओ, तो व्यर्थ संकल्प के फूल बाबा ने चढ़वा दिए हैं। हम सब जानते हैं इतना सहज तो नहीं कि चढ़ा दिए और मुक्त हो गए, वो तो फिर आएंगे, फिर देंगे, फिर आएंगे, ये तो एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन हम एक लिस्ट तैयार करें, आप 12 पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे जिनके कारण मन में व्यर्थ चलता है। सबके 12 कारण नहीं होते, टोटल 12 लिखेंगे हम, किसी के 2-3 कारण ही हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। जैसे बच्चों की चिंताओं के कारण, दूसरों के दुर्व्यवहार के कारण, भय के कारण। मैं तो आजकल देखता हूं जितने लोग मुझे मिलते हैं उनमें से ज्यादा परसेंटेज उनकी होती है जो भयभीत हैं किसी ना किसी कारण से, छुपे हुए कारणों से भी, जिनका उन्हें पता ही नहीं क्यों भयभीत है। भयभीत हैं, डर लगता है अंदर में, आत्मा डर रही है। क्यों डरती है? कारण एक ही है और कुछ नहीं, बढ़े हुए पाप कर्म को डरा रहे हैं आत्माओं को। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे क्यों व्यर्थ संकल्प चलते। इंप्योरिटी के कारण है, मोह के कारण है, लोभ के कारण है, इच्छाओं के कारण है, मैंने बहुत सारे बता दिए, आप जोड़ ले आगे। अनुमान के कारण है, फीलिंग्स के कारण है, परचिंतन के कारण है, प्रदर्शन के कारण है। हम एक लिस्ट बनाएं और उसका निवारण ज्ञान से, पहले हम उनका निवारण करेंगे ज्ञान से। जैसे बाबा ने कहा, बीती बातों को बिंदु, बीती बातों के कारण बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चल सकते हैं किसी के पास। इसने मुझे ये कहा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक माता आई, 2 लड़के, उसको एक छोटा, बड़ा 26 साल का। वो जो 26 साल का है वो इतना तेज तराक है, कहा उसके कारण उसके बाप की मृत्यु हुई 2 साल पहले, और वो चाहता है माँ और ये छोटा भाई भी घर छोड़ के भाग जाए, मैं केवल, और खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ नष्ट करने वाला। अब देखो उस माता का हाल आप सोचो, व्यर्थ ही व्यर्थ, दुख ही दुख, डर भी केवल कुछ कर दे। ऐसे बहुत जगह आजकल जो कलयुग के अंत में कल्चर हो गई है ना, समाज की जो स्थिति हो गई है, काम वासना प्रधान, जिसको बाबा कहते हैं काम की आग लगी हुई है, और ये आग सबको जला के नष्ट कर डालेगी। इससे बहुत व्यर्थ संकल्प, युवक युवतियां ऐसे ऐसे काम करते हैं, माँ बाप परेशान ही रहने लगते हैं और वो किसी की सुनते नहीं। ये सब व्यर्थ के कारण है। इनमें हमें ज्ञान को पहले यूज करना है। पहला बिंदु अशरीरीपन। अगर हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे ज्यादा, तो क्या फायदा होगा कि इन बातों का इफेक्ट कम से कम होगा, ये आत्मा पे छा नहीं जाएगी, हल्का सा इफेक्ट होगा और ज्ञान की कोई बात यूज करते ही उतर जाएगा। जैसे हरेक का अपना अपना भाग्य है, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, जल्दी ही उसका जो बुरा इफेक्ट हुआ है, भारी इफेक्ट हुआ है, वो ढीला पड़ जाएगा। हमें याद रखना है हमारी जो निराकार स्थिति है, यानी हम बिल्कुल निराकार आत्मा हो जाएं, जैसे शरीर है ही नहीं, तो इस निराकार स्थिति में सभी संकल्प समाकर समाप्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। इसलिए ये प्रथम बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबा, बाबा के स्वरूप पर अगर हम स्थिर करें अपने को, तो मन क्या होगा? मन आनंदित। अब हम शांत से आगे बढ़े, शांति तो पहली चीज थी ना, आनंद जो सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। और जब मन आनंदित रहने लगता है तो शांत हो जाता है, वही अनुभव होगा। कोई बात आएगी तो उसका इफेक्ट गहरा नहीं पड़ेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी में दूसरी बात कि हम बाबा को भिन्न भिन्न तरीकों से यूज करके मन को शांत करें। जैसे बाबा हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा, हम ये संकल्प बहुत अच्छा कर दें जीवन में, सर्वशक्तिवान साथ है, कुछ नहीं होगा, ये बात हमें बहुत काम आएगी। अब तो हमारी चिंताएं और संकल्प बहुत छोटे हैं, जब विनाश होने लगेगा तो उनका रूप भयानक हो जाएगा। आप चल रहे हैं, धरती फट गई, गए सब अंदर, ये सीन होंगे। जा रहे हैं, ग्रह युद्ध हो रहे हैं जहां तहां, कोई भी किसी को मारेगा, कोई भी किसी को उठाकर ले जाएगा, कष्ट देंगे, बहुत बुरा हाल होगा ना। जिन्होंने सुना हो हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुए क्या क्या हुआ था, उससे 100 गुना ज्यादा हो जाएगा, 100 गुना ज्यादा हाहाकार होने लगेगा। तो उस समय बाबा हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, ये संकल्प हमारी सेफ्टी का साधन बन जाएगा। इसी में तीसरी बात, हम समर्पित करने लगे सब कुछ बाबा पर, ये बाबा बिंदु, उस पर सब कुछ समर्पित, तुम जिम्मेदार। ये समर्पित भाव बहुत बड़ी चीज है। अक्के फूल समर्पित करना, कितने अच्छे सब थे बाबा के, दयालु कृपालु, ले लो ले लो, तो दे देते हमें ले लो। ये बात पहली बार सुनी हमने इस तरह, नहीं तो बाबा कहता है भक्ति क्या करते हो तुम। कई बाबा कहता था तुम बाबा को महिमा याद दिलाते हो, मैं भूल गया हूँ क्या, हे दयालु हे कृपालु, भक्तों के सब थे ना, पर बाबा ने तो ऐसा लगा, मुझे आपको भी लगा होगा कि भगवान राजी होता है ये सब। जैसे हम कहेंगे दयालु तो वो तो दयालु है ही, उसका दयावान स्वरूप इमर्ज हो जाएगा हमारे कहते ही, याद दिलाने की बात नहीं। कृपालु तो उसका कृपा करने का स्वरूप जैसे काम करने लगेगा फटाफट, और हमें मदद मिल जाएगी। तो हम सभी इनका फायदा उठाकर बिंदु लगाएंगे, बीती को बिंदु। ये तीव्र पुरुषार्थियों के लक्षण हैं सब, क्योंकि अगर तीव्र पुरुषार्थ करने वाले व्यर्थ के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं तो पुरुषार्थ होगा नहीं। मेरे को एक प्रश्न आया था, तीव्र पुरुषार्थ किसे कहते हैं, एक बहन पूछ रही थी कोई कि बाबा बार बार कहता है तेज पुरुषार्थ करो तेज करो, इसका मतलब क्या है। भाई स्थूल में तो तेज दौड़ो, जल्दी काम करो, ठंडे ना रहो, यहाँ तेज पुरुषार्थ का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। बाबा ने कहा और करने लगे, एक बात परिवर्तन के आगे कुछ और बोलो, हाँ गलती रिपीट ना हो, परिवर्तन फटाफट हो, ये नहीं क्रोध आ रहा है तो 50 साल हो गए आ ही रहा है, फीलिंग आ रही है 70 साल हो गए तो आ ही रही है, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थी को पता है उसे क्या करना, भाई माता जी को कुर्सी दे दो, कोई यंग मैन वो पीछे वाले ले लेंगे, ठीक है। तो तीव्र पुरुषार्थी को ये आभास रहेगा कि मुझे ये परिवर्तन करना है, कैसे करना है ये भी, ये नहीं भाई ये तो चल ही रहा है, ये तो मेरा संस्कार है, ये तो होता नहीं है, ये नहीं होगा। उसे पता होगा, अवेयरनेस बहुत अच्छी होगी कि ये करना है, और तेजी से करे। साथ साथ जो अभ्यास बाबा देते आ रहे, इस सीजन का देखें हम, जो ड्रिल्स बाबा ने दी उन्हें उसी भावना निश्चय विश्वास के साथ बहुत करना। अगर बाबा ने कहा हर घंटे 5 स्वरूपों का अभ्यास हो तो करना। तीव्र पुरुषार्थ ये नहीं कहेगा हम तो बहुत बिजी हैं, वो ये भी नहीं कहेंगे हम तो भूल गए, ये साधारण पुरुषार्थियों का काम है। तो जो ड्रिल्स बाबा ने दी, सकास दो, फरिश्तेपन का अभ्यास, बिंदु रूप का अभ्यास, उनको करना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। तो हम सभी अब एक स्वमान पर फिर से मास्टरी करेंगे। दो स्वमान ले लेते हैं, मैं विजयी रत्न हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा के आने तक बहुत अभ्यास। विजयी रत्न के लिए हम याद रखेंगे, कल्प कल्प मेरी विजय हुई है, ये मेरा ही गायन है, ये मेरा स्वरूप है। और मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए याद रखेंगे जो बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात है, बातें इस स्वमान को भुलाएं नहीं। कुछ भी बातें आती है, रोज ही आती है ना मनुष्य के सामने बातें, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, कोई बड़ा विघन भी जीवन में आ जाता है। तो हमें इतनी आदत पड़ जाए इस स्वमान के अभ्यास की कि समय हमको भुला न दे, परिस्थिति हमें भुला न दे। भुलाती है, मैंने भी देखा, भुलाती है। कोई बड़ी चीज हो गई तो हमें भूल जाता है, ये बड़ी चीज हमें लग रही है पर इससे बड़े हम हैं, इससे बड़े हमारी शक्तियां हैं, इससे बड़ी हमारी स्थिति है, हम इसको जल्दी समाप्त कर सकते हैं, हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं, ये भूल जाता है तो वो चीज हम पे हावी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है, कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, अप्स एंड डाउन्स, अपमान और कुछ भी होने वाली दुर्घटना हमें भुला न दे, हमें भुलाएगी नहीं, ये पक्का कर दे। साथ में बाबा ने व्यर्थ संकल्पों की ड्रिल तो दी है, इस पर हर हरेक तीन अपने अपने कारण देख लें। हरेक में कोई एक विशेष बात तो होती है जिसके कारण व्यर्थ चलता है, फीलिंग आती हो, अपमान कोई करे तो, एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो, तीन बातें अपनी अपनी देख लें। कोई भय हो तो, किसने पास्ट में बहुत बुरा किया है वो, उनको हटाना है। तीन कोई भी कारणों को ज्ञान के बल से हटाना है, बाबा को देते रहना है दिन में तीन चार पांच बार, दयालु कृपालु लो, ये तो तुम्हारा है हमारा नहीं है लो। तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे, क्योंकि राइट टाइम बाबा हमें कुछ करने को कहता है, वो टाइम वरदानी होता है ना, उसका हम फायदा उठाएंगे। मैंने बंदर बंदरी कहानी सुनाई ना, सुनी होगी ना, नहीं सुनी, छोटी सी कहानी थी, मुझे किसी ने सुनाई तो मुझे बहुत प्रिय लगी। ये बंदर बंदरी पेड़ पे बैठे थे, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि नीचे कूद जाओ तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाओगे। बंदर ने सोचा ऐसा कैसे होता है, बंदरी कूद गई वो राजकुमारी बन गई, बंदर देखने लगा तो बन गई, मैं भी कूदूं, वो कूदा तो उसकी टांग टूट गई, तो परेशान हुआ, भगवान को पुकारने लगा, आपने ये अन्याय कैसे कर दिया, बंदरी को राजकुमारी बना दिया, मुझे नहीं बनाया। फिर आवाज आई कि वही राइट टाइम था, वरदानी समय, उस टाइम तुम भी कूद जाते तो तुम भी राजकुमार बन जाते, तुमने मान लो 10 सेकंड ही मिस कर दिया तो टांग टूट गई। एक एक क्षण न जाने हमें क्या क्या देना चाहता है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। देखो बाबा हमें सवेरे के लिए क्या क्या नहीं कह रहा है, कभी कहता है रोज सवेरे बाप तुमसे राजी रहता है, भोला नाथ बनकर बैठता है, उसे रिझा सकते हो, उसे मना सकते हो, उससे जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। अभी कहा था वरदान देने आता है, जो चाहे ले सकते हो। कि बाबा की मुरली है 77 की, पढ़ सकते हैं आप, चाहो तो 8 में आने का वरदान ले लो, 108 में आने का वरदान ले लो, ये बड़ी बात कह दी थी बाबा ने। तो समय बहुत कीमती चीज है, और भगवान आता हो तो कितनी कीमती बात हो गई। लेकिन हम सब छोटे बाबा तो कहता ही रहता है कोई बात नहीं, आज नहीं कल ले लेंगे, आज किसी और को ले लेने दो। कितने हल्के संकल्प रहते हैं हमारे, समय के महत्व को सचमुच अगर आत्मा रियलाइज कर ले तो न जाने कौन सा समय हमें क्या देने आया है। उस टाइम अगर हम अच्छी स्थिति में रहें, चित्त को शांत रखेंगे तो वो चीज हमें मिलती रहेगी। तो व्यर्थ के कोई भी तीन कारण निकाल कर हम उन्हें समाप्त करेंगे, बाबा को अक्के फूल चढ़ाते रहेंगे, दो हमारे स्वमान हो गए और जो अति तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो फिर से हर घंटे 500 रूपों का अभ्यास कर लें, कम से कम एक मिनट। ये ऐसा अभ्यास है, बताएंगे अनुभव, जो हाँ स्वरूप तो बनते ही हैं हम, पर हमारे चित्त को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, बिल्कुल फटाफट एकाग्रता बढ़ाते, तो मन आनंदित रहेगा। हाँ ये इंजेक्शन भी है। देखो मुझे पिछली बार जब बाबा आए थे तब से इसकी बहुत गहरी फीलिंग हुई और मैंने पक्का कर, एक तो पहले बाबा ने कहा था तब किया था, एक अभी इससे पहले जो बाबा आए थे 2 तारीख को शायद, तो मुझे बहुत अच्छा, 2 को तो अभी आए ना, आज क्या तारीख, 17 को, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने उस दिन से संकल्प किया मुझे हर घंटे अभ्यास करना है, तो मैंने दृढ़ता पूर्वक इसको चालू रखा। गीत तो बजते ही हैं अपने यहाँ, मैं बाहर भी कहीं नहीं गया, 3 मिनट का गीत, 1 मिनट का गीत, इसके अलावा भी उठते ही शुरू किया, सोते हुए किया, 20 बार तो हुआ ही होगा शायद दिन में, तो इतने अच्छे अनुभव हो गए। इससे और एक फायदा क्या होता है कि हमारे स्वरूप हमें क्लियर होते जाते हैं। मैं आत्मा हूं ये पहला लेसन भी है, लेकिन यही अंतिम लेसन भी है ना, मैं कौन सी आत्मा हूं, वो हमें क्लियर होता जाएगा और नशा गहरा होता जाएगा। हमारा पूज्य स्वरूप हमें क्लियर होता जाएगा, उसकी फीलिंग्स गहरी होती जाएंगी। तो इसलिए मैं तो सबको ये कहूंगा कि संपूर्ण प्राप्तियों के लिए, जीवन को योगयुक्त बनाने के लिए 5 स्वरूपों के अभ्यास पर ध्यान दें, क्योंकि ये स्वरूप साक्षात्कार के निमित्त बनेंगे आने वाले समय में। मुझे, मैंने पहले भी कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल में संसार में मानसिक परेशानियां, मानसिक रोग, अनिद्रा, ये अति में चली जाएगी, लोग सो नहीं पाएंगे रात को। ऐसे में हमारी सकाश, हमारा साक्षात्कार स्वरूप उन्हें सुख देगा, सांत्वना देगा, उन्हें बहुत रिलैक्स करेगा, तब तो वो हमें स्वीकार करेंगे ना अपने इष्ट देव। ऐसे ही थोड़ा ही स्वीकार करेंगे, हमने कहा हम तुम्हारे इष्ट देव हैं और उन्होंने माना, ये थोड़ा ही होगा। हमें देखते ही उनका चित्त शांत हो जाएगा, हमें देखते ही उन्हें लगेगा हमारे रक्षक आ गए, डरने की बात नहीं, जैसे हमें बाबा के सामने लगता है ना, जो फीलिंग्स हमें बाबा के सामने, वही फीलिंग्स उन्हें हमारे सामने होगी, तो वो हमें अपने इस देव देवियां स्वीकार कर लेंगे। इसलिए इस अभ्यास पर सभी बहुत ध्यान देंगे, पसंद है ना, ये 3 काम, 2 स्वमान, व्यर्थ, अक्के फूल चढ़ाते रहना है, इतनी अवेयरनेस रखनी है, जागृति, कि कहीं व्यर्थ संकल्प आ रहा है हमें पता चले कि ये आ गया है, हमें डाउन करेगा, कि व्यर्थ संकल्प हमारी स्थिति को ले जाता है ना, डिप्रेशन में ला देता है, खुशी खत्म। हमारा डिप्रेशन तो यही है ना, खुशी नहीं रहती, तो तुरंत हम उस पर ध्यान देकर चेंज करें और बस ये संकल्प करें, यक के फूल दयालु तुमको अर्पित, ले जाओ यहीं से फेंक दे, लो वहीं पड़ेंगे जाके परमधाम में, शिवलिंग पे चढ़ा दे हम। ये 3 अभ्यास हम बहुत अच्छी तरह करेंगे, ठीक है सभी, बहुत अच्छी तरह करेंगे, तो फिर प्यार के सागर को देखेंगे, प्यार का सागर वो इसीलिए तो है कि उसे दिख रहा है कि उसके स्टूडेंट वो कर रहे हैं जो वो चाहता है। माँ बाप बच्चों को कब प्यार देते हैं, तभी होता है ना। बच्चे बहुत अच्छे हो, एकदम पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, आज्ञाकारी हो, ठीक ठाक, तो देखो कितना प्यार मिलता है बच्चों को। यही स्थिति यहाँ पर है। तो तीनों का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। ओम शांति।